विधाता भव हरिता मुक्ति विधाताओ, मैं नमो तुम्हें मेरे स्वामी, मुझको भी सिद्धि प्रदाताओ। वैराज ग्रही नगिरी धन्य त्रैलोक्य गुरु जाते जन में, है धन्य सुमित्र पिता माता सोमा, भी धन्य हुई जग में। जलो राजग्रही तीर्थ क्षेत्र की जय। अभ्यात्माओं, आप सभी जान रहे हैं कि अयोध्या इतिहासों की जननी है। अयोध्या में जहाँ अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया, उनके चार चार कल्याणक मनाने के लिए इंद्र और देवता अयोध्या आते रहे, वहीं वर्तमान में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जिन्होंने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया, उनके इतिहास को दर्शाने वाला सुंदर अलौकिक अद्भुत अनुपम चिन्ह मंदिर का निर्माण हुआ है। और उसी के साथ सम्राट चक्रवर्ती भरत, जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती रहे, भगवान ऋषभ देव के समोसरण के प्रमुख श्रोता रहे, जिन्होंने अयोध्या को 6 खंड की राजधानी बनाकर राज्य किया, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है, ऐसे ही भगवान भरत का इतिहास भी उनकी प्रतिमा से सहित जिन मंदिर को बनाकर साकार किया गया। और इसके साथ भगवान भरत के 923 पुत्र जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए, उनकी भी प्रतिमाएं बनाकर नया जिन मंदिर बनाया गया है, पूर्णता पर लगभग है। और इसके साथ 9,00,000 साल के इतिहास को दर्शाने के लिए भगवान मुनि सुव्रतनाथ का चिन्ह मंदिर बनाया गया है। रामायण काल में उस मुनि सुव्रतनाथ के मंदिर की बात आती है। इतिहास मिलता है कि अयोध्या में एक भगवान मुनि सुव्रतनाथ का मंदिर था। वहां पर आचार्य श्री द्वितीय महाराज आने वाले भक्तों को संबोधन प्रदान किया करते थे। वहां मथुरा से सप्त ऋषि जब तब अपनी रिद्धि के बल से आया करते थे। इन सब इतिहासों की जननी अयोध्या में बैठ कर के आपसे रूबरू बात करने का ये मौका मिलता है। जब हमने भगवान मुनि सुव्रतनाथ के चरित्र चित्रण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कुछ भाव बनाया कि भगवान मुनि सुव्रतनाथ उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से उनके 3 भावों का वर्णन मिलता है। राजा हरिवर्मा के रूप में उन्होंने चंपापुर में जन्म लिया। अनंत वीर महामुनिराज के पास उन्होंने तत्व का उपदेश सुनकर दीक्षा धारण कर ली, सारे राज वैभव का त्याग किया। पुनः उन्हीं के पाद मूल में, वे चूंकि शुद्ध केवली थे, उनके पाद मूल में 11 अंगों तक के शुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, बड़ी महिमा ज्ञान की, वैराग्य की, संयम की, तपस्या की है। और वह तपस्या राजा हरिवर्मा ने महामुनिराज बन करके किया। तब उन्हें 11 अंग के शुद्ध का ज्ञान प्राप्त हो गया। आयु के अंत में बहुत सुंदर समाधि पूर्वक मरण करके 14वें स्वर्ग में प्राणत स्वर्ग के अंदर प्राणत इंद्र के रूप में जन्म लिया। वहां 20 सागर की आयु बिताकर खूब सम्यक दर्शन को दृढ़ रखा, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना की, महान पुण्य का अर्जन किया। 6 माह आयु के शेष रहने पर उन्होंने अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ा, और संलेखना पूर्वक मरण करके राजग्रही नगरी में आकर जन्म लेते हैं। अब ये तीर्थंकर भगवान का परिचय प्रारंभ होता है कि राजग्रही नगरी में राजा सुमित्र और उनकी महारानी सोमावती सुख पूर्वक महलों में रहा करते थे। भगवान मल्लिनाथ के मोक्ष जाने के पश्चात मुनि सूरतनाथ भगवान का जन्म होता है और जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्म के 15 मास पहले से अर्थात तीर्थंकर भगवान अपनी माँ के गर्भ में आने से भी 6 माह पहले से ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। नगरी सजाई जाती है, धन कुबेर रत्नों की वर्षा शुरू कर देते हैं, देवियां आकर बनने वाली भगवान की माता की सेवा करना शुरू कर देती हैं और ऐसे समय में भगवान मुनि सुव्रतनाथ ने वैशाख कृष्णा दशमी के दिन राजग्रही नगरी में माता सोमावती के गर्भ से जन्म लिया। तीनों लोकों में खुशियां छा गई, नरकों में भी क्षण भर के लिए शांति हो गई। नील वर्ण के भगवान परम सौंदर्य से युक्त ताराओं के परिमंडल से सुशोभित चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। उनके जन्म में महाराजा सुमित्र ने सबको किमिच्छक दान बांटा और इधर जन्म हुआ और उधर स्वर्ग में सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। पहले तो वहीं 7 पग आगे चलकर भगवान को नमन करते हैं। इंद्राणी पूछती है, भगवान क्या बात है? वो कहते हैं कि मध्य लोक में राजग्रही नगरी में 20वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, चलो देवी हम सब मिलकर के उन तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे। सची इंद्राणी तो हर वक्त तैयार रहती हैं क्योंकि उनको मोक्ष का टिकट लेना है, उन्हें भगवान का प्रथम दर्शन करना है और सब के सब परिकर लेकर सौधर्म इंद्राणी मध्य लोक में राजग्रही नगरी में आते हैं। फिर तो क्या कहना है, माता के प्रसूति गृह से सची इंद्राणी बालक को लाकर सौधर्म इंद्र को सौंपती हैं और वो ऐरावत हाथी पर चल देते हैं लेकर के बालक को सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने के लिए। ऐसे दृश्यों को आप प्रायः जन्म कल्याणक के अवसर पर देखा करते हैं। ये सौधर्म इंद्र जो तिलोय पंडति ग्रंथ के अनुसार पूज्य गणी ज्ञानमती माधवी बड़े हर्ष पूर्वक बताती हैं कि ऐसा ऐरावत हाथी जिसके एक एक दांत पर सरोवर बने हैं, सरोवर में कमल और कमलों पर देवियां नृत्य करती हैं, ऐसे ऐरावत हाथी पर आप सब देख रहे हैं कि भगवान को लेकर इंद्र इंद्राणी पांडुक शिला की ओर जा रहे हैं।
गिर सुमेरु पर प्रभु को लेके जाऊंगा, मैं नमन कराऊंगा।
जन्म कल्याण के पुण्य की जय। उन चित्रों को ही देख देख करके या वीडियो देख करके ही इतने प्रसन्न होते हैं, तो सोचिए कि जन्म कल्याणक देखने पर कितने प्रसन्न होंगे। और उस साक्षात जन्म की कल्पना कीजिए कि जब इस धरती पर तीर्थंकर भगवान का साक्षात जन्म हुआ होगा तो कितना प्रसन्नता का, खुशी का, आनंद का, उत्सव का, महोत्सव का वातावरण रहा होगा। और ऐसी कल्पनाएं करते हुए हम लोग प्रतिदिन उस पंच कल्याणक महोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। तो महानुभाव भगवान मुनि सुव्रत नाथ ने जन्म लिया, पुनः मैंने आपको बताया था कि उन्होंने राज्य अवस्था को प्राप्त किया, युवराज से राजा बने, उनका विवाह हुआ और बहुत दिनों तक उन्होंने राज्य किया। पुत्र पुत्रियों के साथ में आनंद मग्न होकर के वे रहते थे। एक दिन एक हाथी के बारे में सुना कि उसने अपना खाना पीना त्याग कर दिया है। सभी लोगों ने महाराजा मुनि सुव्रत जी से कहा, तब उन्होंने अपने अवधिज्ञान से जाना कि हाथी तो पूर्व जन्म में तालपुर का राजा था, लेकिन ये अपने तमाम तरह की कंफ्यूजन मन के अंदर रखता था और वो मिथ्या ज्ञान से हमेशा मोहित रहता था। उसकी खोटी खोटी लेशाएं चलती थी, उच्च कुल का अभिमान किया करता था, पात्र अपात्र की कोई तुलना नहीं कर पाता था और उनसे अनभिज्ञ रहता था, तो सबको किमिच्छक दान दिया करता था। उसकी फल से हाथी हुआ है, समझ लेना। सत पात्र में दान देने से देवगति की प्राप्ति होती है और अपात्र में दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है और कुपात्र में दान देने से तिर्यंच नरक गति आदि की प्राप्ति हुआ करती है। तो उसने कुपात्र में भी दान दिया था, हाथी बन गया। अब पता नहीं क्या हुआ उसको कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, कुछ याद आ गया होगा। तब मुनि सुव्रतनाथ भगवान उसके पूर्व भोग के बारे में जान जाते हैं, हाथी को संबोधित करते हैं, अरे गजराज, तूने पूर्व में हित हित का विवेक नहीं रखा, आज भी तू यहाँ पर बैठा है और अपनी वन क्रीड़ा को ही ध्यान में कर रहा है, अपने उद्यान का ही चिंतन कर रहा है, तू सम्यक तो ग्रहण कर। एकदम इतना सुनते ही हाथी को भी जाति स्मरण हो जाता है और वो कहता है कहां मैं राजा था और कहां मैं हाथी बन गया। अब सोचो कि कोई व्यक्ति ऐसा अपना जान जाए तो उसको कितना दुख होगा। हाथी आंसू बहाता है, बोल नहीं सकता था, लेकिन महाराज मुनि सुव्रत नाथ के समीप वह आंसू बहाता हुआ अपनी आंखों से कह रहा है कि हे भगवान, अब मेरा मिथ्यात्व, अब मेरी मिथ्या धारणाएं सब अश्रुओं के बहाने से जा रही है, समाप्त कर रहा हूँ और अणुव्रतों को धारण कर रहा हूँ। अर्थात हाथी की पर्याय में भी उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, पांच अणुव्रतों को धारण कर लिया। राजा बनकर के जो चीज नहीं पा सका था वह हाथी बनकर के उसने प्राप्त कर लिया। और जब ये विडंबना महाराज मुनि सुव्रत देखते हैं कि एक हाथी को ऐसे जाति स्मरण हुआ, उसने अणुव्रत धारण कर लिया, बस एकदम उनके मन के अंदर वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया कि एक तिर्यंच प्राणी आज बोध को प्राप्त हुआ है, मुझे भी आत्म बोध को प्राप्त करना है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है। और तत्काल स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं, उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, हे स्वामी, आपने जो वैराग्य का भाव बनाया है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन का जो ये उपक्रम किया है दीक्षा लेने का, उसके लिए हम सब अनुमोदना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए मध्य लोक में आए हैं, क्योंकि लोकांतिक देव कभी किसी कल्याणक में नहीं जाते, केवल दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं। पुष्पांजलि डालते हुए भगवान के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए वे सब अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। तुरंत देवता दिव्य पालकी लेकर के आ जाते हैं और पालकी में भगवान को बिठाते हैं और उसके बाद उनको ले जाते हैं नील वन में, यानी कि राजग्रही नगरी जो उस समय 96 मील की थी। उस नगरी में ही नील नाम का वन उद्यान कोई रहा होगा। वहां पर पहुंचते हैं नील वन, चंपक वन के नीचे जाकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। उन्हें कोई गुरु दीक्षा नहीं प्रदान करते, वे नमः सिद्धम बोल करके और दीक्षा धारण कर लेते हैं। ये केवल तीर्थंकर भगवान ही कर सकते हैं, स्वयं दीक्षा केवल तीर्थंकर भगवान लेते हैं। आज कभी कभी कहीं देखा जाता है किसी मुनिराज के द्वारा उनके 28 मूल गुणों के संस्कार किए जाते हैं, ये सब भी एक तरह से आगम के अनुकूल नहीं है। उनके तो दीक्षा लेते ही मना पर ये ज्ञान प्रकट हो जाता है और भगवान एक सामायिक चारित्र में ही लीन हो जाते हैं। भेद रूप चारित्र 28 मूल गुण उनके उन्हें कोई प्रदान नहीं कर सकता। इंद्र स्वर्ग से पिच्छी कमंडल सब चीजें दिव्य होती हैं ला करके और मुनि के प्रतीक में भगवान के समीप रख देते हैं और वही भगवान की दीक्षा होती है। ना कोई उन्हें दीक्षा दे सकता है, ना कोई उनका गुरु बन सकता है। एक केवल महज परंपरा होती है कि जो मुनिराज जो आचार्य का सानिध्य मिलता है वे भगवान का उस समय केश लोच करते हैं, वस्त्राभरण का त्याग कराते हैं। सौधर्म इंद्र वहां निरंतर खड़ा ही रहता है, सारी क्रियाएं करता है और वहां पर सौभाग्यवती महिलाएं आकर के अवतरण विधि करती हैं और भगवान के समक्ष चार वर्तिका चतुर्वर्तिका दीप प्रज्वलित किया जाता है जो भगवान के चार ज्ञान का प्रतीक होता है। तो नीलवन के अंदर चंपक वृक्ष के नीचे भगवान मुनि सूरत नाथ जिनके शरीर का नील वर्ण था। आप सोच रहे होंगे सब जगह भगवान को नीला नीला दिखा रहे हैं, अब उनके शरीर का वर्ण ही नीला था, इसलिए कोशिश किया गया है कि मुनि सूरत नाथ भगवान के चरित्र में मोक्ष जाने के बाद तो वे सिद्ध शिला पर चले जाते हैं, आदेय अमूर्ति बन जाते हैं, उससे पहले पहले का शरीर उनका नील वर्ण का ही दिखाया जाता है। तो ऐसे दीक्षा लेकर भगवान सामायिक चारित्र में लीन हो गए और उसके बाद में उन्होंने राजग्रही के राजा वृषभसेन के घर में खीर का आहार लिया। दीक्षा के बाद सभी भगवान खीर का आहार ग्रहण करते हैं, भगवान नहीं कुछ कहते। जिन राजा के यहाँ आहार होता है नौधा भक्ति करते हैं तो खीर जो है वो सबसे हल्का सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। केवल एक भगवान ऋषभ देव ने इक्षु रस का आहार लिया, क्योंकि उस समय लोग आहार देने की विधि भी नहीं जानते थे। तब राजा श्रेयांश के यहाँ शीघ्रता में इक्षु रस निकाला गया और भगवान को आहार दिया गया। बाकी अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक सबको प्रथम आहार में राजाओं ने खीर का भोजन कराया। ये जैन आगम के अंदर मिलता है। अब क्या होता है कि भगवान तपस्या करते हैं, उसके बाद जा करके अनेक वर्षों के पश्चात भगवान को वैशाख कृष्णा नवमी की तिथि, कि वैशाख कृष्णा दशमी को भगवान का जन्म हुआ, उसी तिथि में आगे जाकर उन्होंने दीक्षा ली। फिर वैशाख कृष्णा नवमी की तिथि आती है जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान मतलब समोसरण की रचना, और भगवान 5000 धनुष ऊपर अगर आकाश में पहुंच जाते हैं तुरंत धन कुबेर समोसरण की रचना कर देता है। और समोसरण के अंदर 8 भूमियां होती हैं जिनके अंदर अनेक रचनाएं हैं, चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि। इन सब भूमियों को पार करते हुए अब जाते हैं अंत में श्रीमंडप भूमि के अंदर, जहां भगवान बीचों बीच में गंध कुटी में चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, हो जाते हैं। भगवान का मुख एक ही होता है, ध्यान रखना, लेकिन उस समोसरण का अतिशय ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को लगता है भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। चाहे आगे पीछे सब तरफ बैठे हैं, उनको लगता है भगवान हमारे को देख रहे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि का पान करते हैं, अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसे भगवान मुनि सूरतनाथ का केवल ज्ञान भी राजग्रही नगरी में हुआ। उनके पुण्य चरित्र को सुनते हुए आप सब पुण्य की वृद्धि करते रहें, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। 17 जून से होने वाले पंच कल्याणक में आइए, नए नए मंदिर जी के दर्शन करके आप सब लोगों को बहुत ही आनंद की और पुण्य की प्राप्ति होगी। चलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय।